एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास एक बहुत ही खास किताब है, ऐसी किताब जो दुनिया भर में मतलब काफी पॉपुलर हुई है।
हाँ, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में थोड़ी शांति ढूंढ रहे हैं या शायद जिंदगी का कोई गहरा मतलब।
बिल्कुल। नमस्ते, आज हम बात कर रहे हैं जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क पर।
हाँ, जिसका मतलब है एक सन्यासी की तरह सोचें। और ये सिर्फ किताब नहीं है, जैसा आपने कहा, ये गाइड की तरह है।
हाँ, जो हमें सिखाती है कि कैसे वो सदियों पुराना ज्ञान आज की लाइफ में यूज कर सकते हैं।
और ये जरूरी क्यों है आजकल? क्योंकि तनाव, चिंता, एक तरह की दिशाहीनता, ये सब बहुत आम हो गया है ना?
हाँ बिल्कुल, ये किताब बाहरी सक्सेस के पीछे भागने के बजाय थोड़ा अंदर देखने को कहती है, मन की शांति।
और मजे की बात यह है कि इसके लिए कई पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं।
सही कहा। अच्छा, तो पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर ले,
जय
जय शेट्टी।
हाँ
उनकी कहानी भी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है।
हाँ बिल्कुल। लंदन में पले बड़े, भारतीय मूल के हैं, बिहेवियरल साइंस पढ़ा, तैयारी तो पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने की थी।
हाँ, लेकिन फिर वो एक सन्यासी से मिले, गौरांगा दास जी से, और बस जिंदगी बदल गई।
सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत आ गए। 3 साल, सोचिए, 3 साल एक वैदिक आश्रम में बिताए, बिल्कुल एक सन्यासी की तरह।
आत्म अनुशासन, ध्यान, वो पुराने ग्रंथ, सब कुछ गहराई से पढ़ा, जिया।
और यही चीज उन्हें खास बनाती है। मेरे ख्याल से वो मॉडर्न वेस्टर्न दुनिया को भी जानते हैं और प्राचीन भारतीय आश्रम जीवन को भी।
सही, इसीलिए वो हजारों साल पुरानी बातों को आज के लिए मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझा पाते हैं।
उनका पॉडकास्ट ऑन पर्पस भी तो है, दुनिया भर में सुना जाता है। वो जैसे दो दुनियाओं के बीच एक पुल जैसे हैं।
तो ये किताब है किस बारे में? इसका मेन आइडिया मतलब क्या है?
देखो, इसका सार ये है कि सन्यासी की तरह सोचना, या जिसे वो मॉन्क माइंडसेट कहते हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं जो जन्म से मिलती है,
अच्छा,
तो सीखी जा सकती है।
हाँ बिल्कुल।
जैसे कोई एथलीट अपनी मसल्स को ट्रेन करता है ना, वैसे ही हम अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं।
किस चीज के लिए ट्रेन करना है?
नकारात्मकता से निपटने के लिए, डर पर काबू पाने के लिए, जो ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं उनसे बचने के लिए, ज्यादा उद्देश्य के साथ, शांति के साथ जीने के लिए।
तो ये उन सब के लिए है जो रोज के शोर शराबे से थक गए हैं, या जिन्हें लगता है कि यार सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या प्रमोशन पाना ही नहीं है, कुछ और भी होना चाहिए।
हाँ, और किताब ना एक सफर की तरह है। 3 मेन हिस्से हैं इसके। जैसे सन्यासी बनने की प्रक्रिया होती है ना, वैसे ही।
ओके, क्या है वो 3 हिस्से?
पहला है लेट गो,
लेट गो,
छोड़ना।
छोड़ना।
क्या छोड़ना? वो सब कुछ जो हमें पीछे खींचता है, जैसे बाहरी दुनिया का प्रेशर, नेगेटिव सोच, हमारे डर। इसे ऐसे समझो कि हमारी असली पहचान पर जो धूल जम गई है ना, उसे हटाना।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा है ग्रो, यानी विकसित होना। अब जब मन की जमीन साफ हो गई, तो उस पर अच्छी आदतें उगाना, अपना उद्देश्य, जिसे शेट्टी धर्म कहते हैं, वो खोजना, मन पर कंट्रोल करना सीखना, अहंकार को साधना।
अच्छा, ग्रो करना। और तीसरा?
तीसरा है गिव, यानी देना। जब हम अंदर से थोड़े मजबूत हो जाते हैं, तो फिर अपना ध्यान बाहर की ओर मोड़ते हैं।
देना मतलब दूसरों की मदद।
हाँ, उसमें कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड आता है, गहरे रिश्ते बनाना, दूसरों की सेवा करना, और उसमें खुशी खोजना, क्योंकि असली खुशी बांटने में ही है। लेट गो, ग्रो, गिव।
सुनने में तो बहुत गहरा लग रहा है। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। पहला भाग, लेट गो, इसमें पहचान, नेगेटिविटी, डर, इरादा, ये सब आता है। पहचान वाली बात, ये मुझे बड़ी सही लगी। हम अक्सर खुद को अपनी नौकरी से, रिश्तों से, चीजों से जोड़ लेते हैं।
हाँ, और शेट्टी कहते हैं कि ये पहचान तो उधार की है, क्योंकि ये सब चीजें तो बदल सकती हैं ना?
बिल्कुल, नौकरी जा सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं।
सही।
तो असली पहचान कहाँ से आएगी? वो आती है हमारे अंदरूनी मूल्यों से, जैसे दया, ईमानदारी, हिम्मत, ये चीजें ज्यादा पक्की हैं।
और वो वैल्यू ऑडिट का आइडिया, वो क्या है?
वो एक एक्सरसाइज है, मतलब बैठकर सोचना कि हमारे लिए सच में क्या जरूरी है, क्या मायने रखता है। आजकल जहां लोग क्या कहेंगे का इतना प्रेशर होता है, वहां अपनी असली वैल्यूज को जानना और भी जरूरी हो जाता है।
हाँ, ये बात तो है।
अच्छा, फिर आती है नेगेटिविटी, नकारात्मकता।
हाँ, और उसके लिए शेट्टी की वो स्पॉट स्टॉप स्वैप तकनीक, ये तो जैसे
जैसे रोजमर्रा की फर्स्ट एड किट है ना?
बिल्कुल, कोई नेगेटिव ख्याल आए उसे पहचानो,
स्पॉट,
फिर रुको और खुद से पूछो क्या ये वाकई सच है, क्या ये मददगार है,
स्टॉप,
और फिर उसे एक ज्यादा संतुलित पॉजिटिव विचार से बदल दो, स्वैप।
सुनने में आसान लगता है पर प्रैक्टिस चाहिए होगी।
हाँ, प्रैक्टिस तो हर चीज में चाहिए, लेकिन ये एक टूल है हाथ में। अच्छा, और डर, डर का क्या?
शेट्टी डर को जोड़ते हैं लगाव से, अटैचमेंट से, किसी नतीजे से, किसी चीज से, किसी इंसान से बहुत ज्यादा चिपक जाना।
वही डर पैदा करता है कहीं वो छूट ना जाए।
हाँ, और यहीं पर वो वैराग्य यानी डिटैचमेंट की बात करते हैं।
वैराग्य का मतलब ये तो नहीं कि परवाह करना छोड़ दें।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, परवाह करना है, कोशिश करनी है, पर ये समझना है कि नतीजा पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है। फल की चिंता से थोड़ी मुक्ति, ये एक तरह की मानसिक आजादी है।
ये कहना आसान है पर करना, खासकर जब बात अपनों की हो या करियर की, मुश्किल लगता है।
हाँ, मुश्किल तो है, शायद छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, एकदम से वैरागी बनना मुमकिन नहीं।
अच्छा, इसी लेट गो में एक और चीज है, इरादा, इंटेंशन।
हाँ, कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, उसका क्यों क्या है।
एग्जैक्टली, वो कहते हैं कि काम के पीछे का इरादा ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय खुद काम के। अगर इरादा सेवा का है, सीखने का है, तो छोटा सा काम भी बहुत सेटिस्फैक्शन दे सकता है।
और अगर इरादा डर का है या लालच का, तो बड़ा काम भी अंदर से खालीपन दे सकता है।
बिल्कुल, तो हर काम से पहले बस एक पल रुक कर सोचना, मेरा इरादा क्या है, ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा फर्क ला सकती है।
तो ये था लेट गो। अब आते हैं दूसरे पर, ग्रो, विकसित होना। इसमें उद्देश्य, रूटीन, मन और अहंकार की बात है। उद्देश्य मतलब धर्म, ये कैसे खोजें, ये तो बड़ा सवाल है।
हाँ, और शेट्टी से बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं। धर्म का मतलब यहां सिर्फ रिलीजन नहीं है, ये वो रास्ता है जहां तीन चीजें मिलती हैं।
क्या तीन चीजें?
पहला, वो चीज जिसमें आप अच्छे हैं और जिसे करना आपको पसंद है, यानी आपका पैशन और स्किल। दूसरा, दुनिया को उस चीज की जरूरत है या नहीं, यानी उसकी उपयोगिता, सेवा का पहलू। जहां ये तीनों मिल जाएं, वही आपका धर्म है।
अच्छा, पैशन, स्किल और सर्विस। दिलचस्प फ्रेमवर्क है ये। खोजना शायद एक प्रोसेस है, कोई डेस्टिनेशन नहीं।
हाँ बिल्कुल, और इस रास्ते पर चलने के लिए चाहिए डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता, इच्छा शक्ति तो कमजोर पड़ जाती है।
तो फिर कैसे आएगा डिसिप्लिन?
रूटीन से, दिनचर्या से। शेट्टी के दो प्रिंसिपल हैं, जगह में एनर्जी होती है और समय में याददाश्त होती है।
मतलब
अगर आप रोज एक ही जगह एक ही समय पर कोई काम करते हैं, जैसे मेडिटेशन या पढ़ाई, तो धीरे धीरे वो जगह और वो समय आपको उस काम की याद दिलाने लगते हैं, आदत बन जाती है। खासकर सुबह की एक शांत रूटीन बनाना बहुत फायदेमंद हो सकता है।
हाँ, वो दिन की टोन सेट कर देती है। अच्छा, और मन का क्या? मन का कंट्रोल, वो रथ वाला उदाहरण बड़ा अच्छा था।
हाँ, मन की तुलना एक रथ से की है। पांच इंद्रियां हैं घोड़े, मन है लगाम, बुद्धि है सारथी और आत्मा है यात्री।
अगर बुद्धि यानी सारथी सोया हुआ है या कमजोर है, तो इंद्रियां रूपी घोड़े रथ को कहीं भी भटका ले जाएंगे, मनमानी करेंगे। तो माइंडफुलनेस और ध्यान क्या है? वो सारथी को जगाने और ट्रेन करने के तरीके हैं।
बिल्कुल, ताकि हम मंकी माइंड जो छलता कूदता रहता है, से मॉन्क माइंड जो शांत और केंद्रित है, उसकी तरफ बढ़ सकें।
और इस रास्ते में एक रोड़ा है अहंकार, ईगो।
हाँ, शेट्टी कहते हैं कि स्वस्थ आत्मविश्वास और नुकसान पहुंचाने वाले अहंकार में बहुत महीन लेखा होती है।
अहंकार क्या करता है? वो तुरना करता है, अपनी गलतियां छुपाता है, दूसरों को कम समझता है।
सही, और इसे काबू में करने का तरीका क्या है? विनम्रता और सेवा, दूसरों के योगदान को सराहना करना, फीडबैक को खुले मन से सुनना, दूसरों की सफलता पर खुश होना, ये अहंकार को कम करते हैं।
तो ये था ग्रो। अब आखिरी पड़ाव, गिव, देना। इसमें कृतज्ञता, रिश्ते और सेवा। कृतज्ञता मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये एक एहसास है, एक स्टेट ऑफ माइंड है,
और ये चिंता और ईर्ष्या का तोड़ है।
हाँ बिल्कुल, जब हम इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या है, बजाय इसके कि क्या नहीं है, तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। शेट्टी रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की सलाह देते हैं, जैसे रात को सोने से पहले बस तीन ऐसी चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए आप आभारी हैं।
ये तो किया जा सकता है, आसान भी है। और रिश्ते, रिश्ते कैसे देने का हिस्सा है।
शेट्टी कहते हैं कि रिश्तों में भी सोच समझकर इंटेंशन के साथ एनर्जी लगानी पड़ती है। वो विश्वास के चक्र की बात करते हैं, यानी ये पहचानना कि किन रिश्तों में हमें अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए।
और प्यार को सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक क्रिया समझना, एक्शन।
हाँ, प्यार में कोशिश लगती है, सहानुभूति लगती है, ध्यान से सुनना पड़ता है। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में ये बहुत जरूरी है कि हम रिश्तों को वक्त दें, ध्यान दें।
सही बात है। और आखिर में सेवा।
हाँ, सेवा। शेट्टी के मुताबिक खुद को बेहतर बनाने का, ग्रो करने का असली मकसद यही है कि हम दूसरों की सेवा करने के लायक बन सकें।
सेवा मतलब कोई बड़ा सामाजिक काम ही?
हाँ, बिल्कुल।
वो भी हो सकता है, पर रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी सेवा हैं। किसी की मदद कर देना, किसी के लिए कुछ अच्छा कर देना बिना किसी उम्मीद के। अपने धर्म को, जो हमने ग्रो सेक्शन में समझा, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना, यही सच्ची टिकने वाली खुशी देता है। ये हमारी संस्कृति में भी तो है, सेवा परमो धर्मः।
हाँ, बिल्कुल। शेट्टी ने उसे पर्सनल सेटिस्फैक्शन और पर्पस से जोड़ दिया।
बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे लिए तो पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि सन्यासी जैसा शांत और फोकस्ड मन, वो सबके लिए मुमकिन है। ये कोई किस्मत की बात नहीं, प्रैक्टिस की बात है।
हाँ, और दूसरी कि असली वैल्यू, असली पहचान अंदर से आती है, बाहर की चीजों से नहीं। जैसे पद क्या है, लोग क्या सोचते हैं, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ये बात शायद और भी जरूरी है।
बिल्कुल। तीसरी, हमारे काम के पीछे का इरादा, उसका क्यों, बहुत ज्यादा मायने रखता है।
चौथी, वो उद्देश्य या धर्म खोजने का तरीका, पैशन, स्किल और सर्विस का मेल, ये एक क्लैरिटी देता है।
और पांचवी, कि अनुशासन के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है, एक अच्छी रूटीन बनानी पड़ती है, आदतें बनानी पड़ती हैं।
और छठी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि सच्ची और लंबी चलने वाली खुशी अक्सर दूसरों के लिए कुछ करने में, सेवा में मिलती है। ये हमें मैं मेरा से बाहर निकालकर हम की सोच की ओर ले जाती है।
किताब में कई बातें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे वो कहते हैं, पहचान एक धूल भरे आईने की तरह है, जितनी धूल साफ करेंगे उतना ही सच्चा प्रतिबिंब दिखेगा।
वाह, कितनी सिंपल पर गहरी बात है। बाहरी लेबल्स को हटाकर अंदर झांकने की जरूरत।
हाँ, और वो प्रैक्टिकल मंत्र, स्पॉट स्टॉप स्वैप, नेगेटिविटी से लड़ने का जैसे हथियार मिल गया हो।
एक और जो मुझे याद आ रही है, सबसे ऊंचा उद्देश्य सेवा में जीना है। आपका जुनून आपके लिए है, आपका उद्देश्य दूसरों के लिए।
ये जुनून और उद्देश्य का फर्क बहुत अच्छे से समझाया है।
और ये कि हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं, बल्कि हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। मतलब हमारे विचारों में कितनी ताकत है।
तो इन सब अच्छी अच्छी बातों को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? कुछ छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स?
हाँ, जैसे व्यक्तिगत लेवल पर शायद दिन की शुरुआत बस 5 मिनट शांत बैठकर करें या ध्यान से। जब कोई नेगेटिव सोच आए तो वो स्पॉट स्टॉप स्वॉप ट्राई करें। रात को सोने से पहले बस एक चीज लिख लें या सोच लें जिसके लिए आभारी हैं।
ठीक है। और काम पर, ऑफिस में,
मीटिंग में बोलने से पहले दूसरों को ध्यान से सुने। शायद कोई सहकर्मी परेशान है, उसकी बिना किसी उम्मीद के थोड़ी मदद कर दें। जब स्ट्रेस हो तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय एक गहरी सांस लें और सोचें, मेरा इरादा क्या है अभी।
और रिश्तों में,
जब किसी अपने से बात कर रहे हो तो फोन को साइड रख दें, पूरा ध्यान दें। हफ्ते में एक बार किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को फोन करें जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई। छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रिया कहना, ये छोटी चीजें ही बड़ा असर डालती हैं।
हाँ, लगता तो है कि ये सब किया जा सकता है, छोटे छोटे बदलाव।
बिल्कुल।
तो अंत में मेरे लिए इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि शांति और उद्देश्य कोई लॉटरी नहीं है जो किसी किसी को लगती है। ये सचेत चुनाव और रोज की प्रैक्टिस का नतीजा है। हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं।
और मेरे लिए ये कि हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी कितना रेलेवेंट और प्रैक्टिकल हो सकता है। शेट्टी ने जैसे आध्यात्मिकता और सेल्फ हेल्प के बीच का गैप कम किया है, ये किताब सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि सच में बेहतर बनने और जीने का एक रास्ता दिखाती है, एक रिएक्टिव लाइफ से एक प्रोएक्टिव पर्पसफुल लाइफ की तरफ।
वाकई, जैसे एक भटकते हुए मन के लिए एक नक्शा मिल गया हो, शांत और केंद्रित मन की ओर ले जाने वाला।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।